सो आज गोवर्धन पूजा महामहोत्सव का दिन है। सो हम लोग गोवर्धन पूजा के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद दोपहर को गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाएगा, तो उसमें मोहन रूपा प्रभु प्रवचन देंगे गोवर्धन पूजा के बारे में और विस्तार से बताएंगे। सो भागवतम के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में गोपियां बोल रही हैं और गोपियां गोवर्धन जो पर्वत है उसका गुणगान कर रही हैं, हरिदास वर्यो, है ना। सो गोपियां भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं और वही गोपियां जो है वो गोवर्धन पर्वत की प्रशंसा कर रही हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि गोवर्धन पर्वत कितने महान है, कितने प्रशंसनीय है कि स्वयं गोपियां भी उनकी प्रशंसा कर रही हैं। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि गोपियां गोवर्धन की क्यों प्रशंसा कर रही हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है और ना केवल भगवान कृष्ण की सेवा में बल्कि उनके साथ जो ग्वाल बाल हैं, ना केवल ग्वाल बाल बल्कि उनके साथ जो गायें और बछड़े हैं उनकी सेवा में भी जो हैं गोपियां पूरी तरह से जो गोवर्धन पर्वत है पूरी तरह से समर्पित है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। सो किस तरह से समर्पित है, किस तरह से सेवा कर रहे हैं, तो भागवतम के श्लोक में बता रहे हैं कि जो गोवर्धन पर्वत है वो भगवान के लिए बहुत सुंदर कंदराओं का जो है कंदराएं प्रदान कर रहे हैं, गुफाएं दे रहे हैं। और वो गुफाएं ऐसी हैं कि अगर गर्मी हो तो ठंडी रहती हैं गुफाएं, और अगर जो सर्दी हो तो गुफाएं गर्म रहती हैं। तो भगवान जो है कृष्ण उन गुफाओं में अपने सखाओं के साथ और गोपियों के साथ विहार करते हैं। और जो गोवर्धन पर्वत है वो शीतल जल प्रदान करता है, बैठने के लिए आसन देता है, गायों के लिए घास, हरी हरी घास प्रदान करता है, और जो गायों के लिए विशेष रूप से सुगंधित घास देता है गोवर्धन, जिसको खाकर गायें और पुष्ट हो जाएंगी और भगवान कृष्ण के लिए बहुत ही सुगंधित जो है दूध प्रदान करेंगे, है ना। और ग्वाल बालों के लिए कंद मूल, और वो कंद मूल ऐसे हैं कि अमृत को मात देते हैं, वो इतने स्वादिष्ट कंद मूल प्रदान करते हैं गोवर्धन। और बताया कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब चलते हैं गोवर्धन पर्वत पे तो उनके चरण स्पर्श से जो गोवर्धन पर्वत के रोम रोम हर्ष हो जाता है, उनके रोए खड़े हो जाते हैं। तो रोए कैसे खड़े हो जाते हैं कि जो घास है गोवर्धन पर्वत पे वो घास एकदम खड़ी हो जाती है और पसीना आ जाता है गोवर्धन पर्वत को। तो पसीना कैसे आ जाता है, जो घास पे ओस पड़ी हुई है वो गोवर्धन पर्वत का पसीना है, है ना। और आंखों से अश्रु बहाते हैं गोवर्धन पर्वत, तो अश्रु कैसे बहाते हैं, जो झरनों से पानी बह रहा है, जो पत्थरों से पानी टपक रहे हैं वो गोवर्धन पर्वत जो है उनके अश्रु हैं। सो एक प्रभुपाद के शिष्य हैं गिरिराज महाराज, तो वो एक लेक्चर उन्होंने दिया अमेरिका में और उन्होंने बताया कि उस प्रवचन में कि गोवर्धन पर्वत ने अपना पूरा शरीर भगवान के और उनके भक्तों की सेवा में लगा दिया, है ना। मतलब भगवान और उनके भक्त उनके शरीर पे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, और गोवर्धन पर्वत बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहे, है ना, बल्कि उनको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है गोवर्धन पर्वत को। और यहाँ पर ये भी बात महत्वपूर्ण है कि भगवान अपनी सेवा से जितनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके भक्तों की सेवा करे। तदीया नाम समर्चनम, है ना। तो शिव जी भी कह रहे हैं पार्वती जी को कि भगवान विष्णु की आराधना परम है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा परम, जो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ जो आराधना है, तदीया नाम समर्चनम, वो भगवान के भक्तों की आराधना करना, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, ज़्यादा उत्तम है, भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न हो गए, है ना। सो भगवान कृष्ण का एक नाम है नेक कर्म कृत। हाँ, भगवान एक तीर से कई निशाने करते हैं ना, जैसे कल भगवान ने दामोदर लीला की थी, दिवाली थी कल, है ना। सो दामोदर लीला के द्वारा उन्होंने माता यशोदा का यश बढ़ाया, माता यशोदा ने उनका यश बढ़ाया। हाँ, और सारे ब्रजवासियों का यश बढ़ाया उन्होंने अपनी माता की, जो ये दिखाया कि सेवा के द्वारा हम भगवान को वशीभूत कर सकते हैं, भगवान को जो है अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये दिखाया भगवान ने भक्ति के महत्व को, और नारद मुनि के वचनों को जो है अपने भक्त के वचनों को भी पूरा किया, और कुबेर पुत्रों को नल ग्रीव और मणि, नल कुबेर और मणि ग्रीव उनका भी उद्धार किया, है ना। सो भगवान एक तीर से कई निशाने साधते हैं भगवान। तो इसी प्रकार जैसे कल दिवाली थी, और दिवाली मनाने के बाद जो नंद महाराज और सब ग्वाल बाल आज के दिन इंद्र पूजा का आयोजन कर रहे थे, है ना। सो इंद्र पूजा का आयोजन की तैयारी पहले से चल रही थी, है ना। तभी माता यशोदा ने सारी जितनी भी उनके महल में दासियां थी सबको काम में लगाया था, और तो खुद दही मथ रही थी वो। जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने स्तनपान की इच्छा प्रकट की, और वो दूध उबल रहा था तो यशोदा माई ने उनको एक तरफ रख के दूध को संभाला, और वो सारा जो दामोदर लीला हुई, है ना। सो उसका आयोजन चल रहा था, तो भगवान कृष्ण ने नंद महाराज से पूछा कि आप इतना तैयारी कैसे कर रहे हो, मतलब क्या प्रयोजन है, क्या कुछ सोच समझ के कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो कि प्रथा चली आ रही है, तो क्योंकि सब लोग कर रहे थे तो आप भी कर रहे हो इसको। आपको पता है कि अगर सोच समझ के काम किया जाए तो फलीभूत होता है, बिना सोचे समझे काम करो तो इतना फल नहीं मिलेगा उसका। तो नंद महाराज उनको उत्तर देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, छोटा बालक है इसको क्या बताएंगे, इसको 7 साल का बालक है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मुझे सब जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मैं अबोध हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका आत्मीय भी हूँ। तो फिर नंद महाराज ने बोला कि देखो जो हम लोग तो ग्वाल बाल हैं, हमारा सारा काम ही खेती से चल रहा है ना। सो अब जो खेती है वो वर्षा पे निर्भर है, तो जब तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, इस कारण से जो है हम इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। सो भगवान कृष्ण ने वहाँ पर कर्म का सिद्धांत प्रकट किया, उन्होंने बोला कि हर चीज़ कर्म से हो रही है, इंद्र भी कर्म से प्रभावित होकर फल दे रहे हैं, तो इंद्र की उपासना करने का क्या पॉइंट है, और इंद्र दिख भी नहीं रहा, हम इंद्र की उपासना करते हैं इंद्र कहाँ दिख रहे हैं, उससे अच्छा है कि गोवर्धन की आराधना करो, गोवर्धन दिख भी रहा है ना। सो क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो भगवान कृष्ण के प्रति इतने अधिक अनुरक्त हैं कि बिना किसी इफ बट के, किंतु परंतु के, भगवान की बात मान लेते हैं। सो नंद महाराज ने सभी ब्रजवासियों को बोला कि जो घी इत्यादि सामग्री इकट्ठी की है उसको गोवर्धन पूजा में लगा दो, तो गोवर्धन पूजा शुरू कर दिया। और गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि गोवर्धन पूजा से सारे ब्रजवासी तृप्त हो गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति सूख गया, वो था इंद्र, है ना। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ये सोच रहा था कि देखो ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इनको करना ही चाहिए। इंद्र ये भी नहीं सोच रहा था कि उससे बड़े देवी देवता भी बैठे हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, हाँ, और प्रजापति हैं। सो इंद्र तो बहुत एक तुच्छ देव हैं, मान लिया कि देवताओं के राजा हैं, लेकिन उनसे भी बड़े देवी देवता मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में इंद्र अपनी पूजा का सुख उठा रहे थे, लाभ उठा रहे थे। सो उनके जो दर्प है, जो उनका अभिमान है, उसका खंडन करने के लिए भगवान ने इंद्र की, और भगवान का जो पर्पस है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का उद्देश्य इंद्र का अपमान करना नहीं था, बल्कि उसके जो दर्प है, जो उसका अभिमान है, उसका खंडन करना था। भगवान किसी का अपमान नहीं करना चाहते, है ना। सो सभी ब्रजवासियों ने मिलके गोवर्धन पूजा किया, और गोवर्धन पूजा के फलस्वरूप इंद्र कुपित हो गया, और इंद्र ने जो है संवर्तक बादलों को भेजा, पहले वायु को भेजा कि जाओ सारे ब्रजवासियों को उड़ा दो। सो वायु आई, और पीछे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो उसमें एक तूफान के बारे में दिखाया हुआ था। बहुत तेजी से तूफान आया, मकानों की छतें उड़ गई, पेड़ टूट गए सारे। तो बहुत ताकतवर होता है तूफान, सामने कोई भी चीज आए उसको उड़ा सकता है, है ना। सो वायु देव आए, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सारा तहस नहस करने की कोशिश की, और उसके बाद इंद्र ने संवर्तक बादलों को भेज दिया। और बताते हैं कि एक एक जो बूंद है वो हाथी के पाँव के समान इतनी बड़ी थी, और ऐसे वज्र के समान गिरती थी। सो सारे जो ब्रजवासी हैं वो दौड़ के गए भगवान कृष्ण के पास, उनको बोला कि देखो बहुत विपत्ति आ गई है, हमारी रक्षा करो। सो यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि देवी देवता ये क्यों, जो ब्रजवासी हैं क्यों कह रहे हैं भगवान कृष्ण को उनकी रक्षा करने के लिए, नहीं? ये प्रश्न है कि क्या ब्रजवासियों को विश्वास नहीं था कि भगवान उनकी स्वतः रक्षा करेंगे? सो सभी ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे रक्षा करो, क्योंकि वो भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं। ब्रजवासी कोई भी कार्य करेंगे वो भगवान का यश बढ़ाने के लिए करेंगे, ऐसा कुछ उनका अपना कुछ निजी स्वार्थ उसमें नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो ये सोचेंगे कि कृष्ण कहने पर ही काम करेंगे, लेकिन वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनका यश और बढ़ जाए। जिस प्रकार जब उत्तरा के गर्भ पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किसने? अश्वत्थामा ने, है ना। तो उस समय उत्तरा आई और भगवान से प्रार्थना की, कुंती महारानी ने प्रार्थना की कि हे कृष्णा आप प्लीज मेरे गर्भ की रक्षा करें। तो वो प्रार्थना अलग से करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि एक असंभव स्थिति प्रकट हो गई थी, और उस प्रार्थना के द्वारा पांडवों ने ये दिखाया कि कैसी भी असंभव परिस्थिति हो भगवान उसका निराकरण कर सकते हैं, और उसके द्वारा भगवान का यश और भी बढ़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है ब्रजवासियों ने भगवान से बोला कि आप हमारे रक्षा करें। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसी भी ब्रजवासी ने ये नहीं कहा, भगवान से कंप्लेंट नहीं किया, देखो आपने गोवर्धन पूजा करवा दी, बेकार में भसूड़ी खड़ी कर दी, अच्छी भली चल रही थी गाड़ी, नहीं, गोवर्धन पर्वत को बुरा थोड़ा लग रहा था कि उसकी उपासना नहीं कर रहे, या आपने जबरदस्ती शुरू करा दिया, देखो कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, है ना। उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी कंप्लेंट का, शिकायत का भाव नहीं था, है ना। तो एक जो भक्त है उसका भी यही भाव होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी डिवोशन लाइफ के अंदर, कुछ भी समस्या आएगी तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए, ना भगवान से, ना गुरु से, ना वरिष्ठ भक्तों से। और कुछ भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि विपरीत स्थिति है, तो उसको भक्त को स्वीकार करना चाहिए उस परिस्थिति को कि भगवान ने विशेष रूप से हमारे लिए इस परिस्थिति को बनाया है ताकि हम और ज़्यादा अच्छे भक्त बन सकें, है ना। क्योंकि जो सोना है वो आग में जल के शुद्ध होता है, बर्फ में लग के शुद्ध नहीं होता सोना, है ना। आग में जलेगा तो ही सोना जो है और ज्यादा शुद्ध होगा। तो जिस प्रकार ब्रजवासियों ने कुछ भी शिकायत नहीं की, इसी प्रकार भक्तों के जीवन में अगर कोई विपत्ति आए तो उनको कुछ भी शिकायत का भाव मन में नहीं लाना चाहिए और उस परिस्थिति को भगवान की विशेष कृपा समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए और उस परिस्थिति में रहकर भी भगवान की अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। मैं जब इस्कॉन से जुड़ा था तो उस समय श्रीधर महाराज प्रभुपाद के शिष्य थे, वो उस समय जो है जीवित थे, और ईस्ट ऑफ कैलाश टेंपल में उनका लेक्चर था। तो मैं उनसे ज़्यादा परिचित नहीं था उनसे, मैं तो हमें पता चला कि वहाँ पर उनका लेक्चर हो रहा है, लेक्चर है आज, तो हम सारे पहुँच गए उनका लेक्चर सुनने के लिए। तो वो आए, उन्होंने एक टोपी डाली हुई थी, उस टोपी के ऊपर लिखा हुआ था प्रभुपाद डॉग। सो वो दिखा रहे थे कि वो प्रभुपाद के कुत्ते हैं, प्रभुपाद उनके स्वामी हैं, और मतलब बहुत ही शरणागत का भाव था उनका। और वो आए बहुत ही मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने पूरा एक घंटा लेक्चर दिया। तो लेक्चर ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पर सायरन की आवाज़ आई एम्बुलेंस की। तो हमने पूछा कि ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्या करने आई है, तो उन्होंने बोला कि इनको जो श्रीधर महाराज हैं उनको कैंसर, उनको रोग है उनको, तो अभी ये ट्रीटमेंट के लिए वो एम्बुलेंस बुलाई है और ये अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं एडमिट होने के लिए। तो बहुत ही पेन में थे वो श्रीधर महाराज, लेकिन बहुत ही मतलब उन्होंने जब तक वो एम्बुलेंस नहीं आ गई हमें पता भी नहीं चला कि उनको कोई तकलीफ है, है ना। सो जो भक्त हैं, जो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद आप देखो कि जब अमेरिका जा रहे थे रास्ते में दो हार्ट अटैक हो गए, तो प्रभुपाद ने भगवान को ये नहीं बोला कि आपके लिए जा रहा हूँ, आप प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी किए जा रहे हो, मतलब क्या पॉइंट है, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, हाँ, लेकिन उल्टे आपने हार्ट अटैक करवा दिए। तो प्रभुपाद ने ऐसे नहीं बोला, प्रभुपाद ने बोला काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते, कि मैं एक कठपुतली हूँ और आप मुझे नचाने वाले हो, मेरा अपना स्वयं से कुछ उद्देश्य नहीं है, मेरे ना ही मेरे में कुछ शक्ति है, आप जैसे भी मुझे आप नचाना चाहते हो, जैसी भी परिस्थिति में डालना चाहते हो, इस उग्र कर्म वाले देश में आप मुझे भेज रहे हो, आपकी जैसी इच्छा है मैं उस इच्छा के को अंगीकार करता हूँ और उसके अनुसार कार्य करूँगा। और जब प्रीचिंग प्रभुपाद की सफल हो गई तभी प्रभुपाद ने बोला नहीं देखो मैंने कितना प्रीचिंग कर दिया, तब भी प्रभुपाद ने बोला कि ये सारी सफलता मेरे गुरु के कारण है। सो कुछ भी विपरीत स्थिति आए उसको बहुत ही सहनशील भाव से अंगीकार करना चाहिए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तृणादपि सुनिच्छे तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष की भांति सहिष्णु रहना चाहिए हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो चाहे विपरीत हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, सहन करना चाहिए, उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। सो जब ब्रजवासी सब भगवान कृष्ण के पास गए और उनको बोला कि देखो इतनी प्रॉब्लम जो है, ये इतनी आंधी तूफान बारिश हो रही है, आप हमारी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो आप बलशाली हो, सो आप रक्षा करने में समर्थ हो तो प्लीज आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण ने जो है खुद को उठा लिया। तो किसी को आप पता भी नहीं चला कि गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया है। हाँ, सब लोग ने ये देखा कि गोवर्धन पर्वत भगवान के हाथ पर अभी शोभा दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कैसे उठाया किसी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ है ना। और गोवर्धन पर्वत उठाया और भगवान ने सब लोगों को बोला कि सारे फटाफट जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। तो सब लोग संकोच कर रहे थे कि गोवर्धन पर्वत के नीचे आने में। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये आपकी रक्षा के लिए है और मुझे कुछ भी भार प्रतीत नहीं हो रहा। सो यहाँ पर हमारे आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि करोड़ों गायें थी, लाखों ब्रजवासी थे, गोपियाँ थी, तो वो सब गोवर्धन पर्वत के नीचे कैसे सारे मतलब एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं? सो हमारे आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि भगवान कृष्ण के स्पर्श से गोवर्धन पर्वत पुलकित हो गया था और फैल गया था, और इतना फैल गया था कि सारे जो ब्रजवासी ग्वाल बाल गायें बछड़े सब उसके नीचे आराम से रह सके। और गोपाल चंपू में बता रहे हैं कि जीवा गोस्वामी बता रहे हैं कि जो बाहर है गोवर्धन पर्वत की सीमा से बाहर जो है वो मतलब आंधी थी, तूफान था, बारिश थी, अंधकार था, लेकिन इन सब के विपरीत दशा जो थी वो गोवर्धन पर्वत के नीचे थी। मतलब मधुर स्वरों का गुणगान हो रहा था, सारे ब्रजवासी भगवान का गुणगान कर रहे थे और जरा सा भी भय नहीं था किसी को। और जो गोवर्धन पर्वत की मणियाँ हैं उससे चारों तरफ प्रकाश हो रहा था, और बिल्कुल भी जो बारिश बिजली इत्यादि का तूफान का कुछ भी प्रभाव उसमें नहीं आ रहा था। सब लोग बड़ी शांति से बैठे थे। और क्यों शांति से बैठे थे? क्योंकि गर्ग संहिता में इसका वर्णन दिया गया है कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अनंत शेष को बुला लिया था, और अनंत शेष ने जो है गोवर्धन को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। और जो सुदर्शन चक्र है वो जो भी बिजलियाँ और वज्र इत्यादि कौंध रहे थे उसको निष्क्रिय करते जा रहे थे। तो इंद्र ने भेजा, पहले वायु के दूतों को भेजा जाके देख के आओ, सब नष्ट हो गया ना। तो सारे लोग वहाँ से वापिस आए, बोले कि कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, एक मतलब पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिला। तो इंद्र ने वो बिजली और सबको भेजा कि जाओ तुम जाके कुछ वहाँ पे अनिष्ट करके आओ, वज्रपात किया। तो फिर अपने गुप्तचरों को भेजा, तो गुप्तचर आए बोल रहे कि एक पत्ता तक नहीं टूटा आपके ब्रजपात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और गर्ग संहिता में लिखा है कि जब इंद्र ऐरावत पर बैठकर वज्रपात करने के लिए आया तो भगवान ने जो है भगवान के पराक्रम से जो वज्र और इंद्र का वज्र फेंकने वाला हाथ दोनों को लकवा मार गया था, वो वज्र फेंक ही नहीं पाया है ना। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आ रहा है। सो इंद्र जब मतलब ये इंद्र ने देखा कि एक पत्ता तक मतलब टूट के नहीं गिरा सका मैं, तो इंद्र को बहुत ही संकोच हुआ। तो इंद्र ने एकदम इंद्र को याद आ गया कि वही तो कृष्ण तो मेरा छोटा भाई है, वामन रूप में आया था और मेरा सहायक है, असुरों को मारने में मेरी मदद करता है, तो चलो ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो सारे अपने जो साथी संवर्तक बादल वगैरह सबको वापस ले गया, सूर्य उदय हो गया। तो अब भगवान कृष्ण ने बोला सबको चलो बाहर आ जाओ। तो सब लोग कहते नहीं पहले आप बाहर जाओ तो भगवान ने कहा भी आप सारे बाहर निकलो, अगर मैं बाहर निकल गया तो आप लोग बाहर कैसे निकलोगे, गोवर्धन पर्वत को कौन संभालेगा। तो और जब सब लोग अंदर गए थे तो जितने भगवान के सखा थे वो सारे अपने लाठियां वाठियां लगा के उसको फिक्स कर रहे थे। और श्री राम भगवान को बाद में श्री राम ने बोला भी कि तुम्हारा इसमें कौन सा बड़ा रोल था गोवर्धन पर्वत को उठाने में, मेरे भ्रमणत्व की शक्ति से जो गोवर्धन पर्वत है वो हवा में तैर रहा था, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं था। और उन्होंने भगवान को चैलेंज किया, मेरे से आके लड़ाई करके दिखाओ अगर ताकत है तो। कहने का मतलब ये। और फिर हम देखते हैं कि जब गायें बाहर निकल रही थी लेकिन भगवान के दर्शन के लिए फिर वापस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से सबको हटाया, सारे बाहर निकले। तो फिर भगवान का फ्रेंड्स ने बोला अब हम संभालेंगे तुम बाहर निकल जाओ, तो भगवान ने हल्का सा झुकाया गोवर्धन पर्वत को, तो सारे काम गए, तो सारे फटाफट बाहर निकले वहाँ से भगवान के फ्रेंड्स। तो भगवान ने बिल्कुल जहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ से गोवर्धन पर्वत को उठाया था बिल्कुल वहीं रख दिया, कोई पता भी नहीं लगा सकता था कभी इसको उठाया गया है। तो सभी जो भगवान के, और वहाँ पर बहुत ही विपरीत भाव उत्पन्न हो गया। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि जो गुरुजन हैं, जो बड़े वृद्ध जो लोग थे वो भी बहुत खुशी से भगवान का आलिंगन कर रहे थे, है ना। तो जब और जो गोपियाँ थी वो भगवान के सिर पर हाथ फेर कर उनको आशीर्वाद दे रही थी, है ना, कि चलो तुमने अच्छा काम किया। और जो नंद महाराज हैं, यशोदा माई जो हैं, और बाकी जो वृद्ध गोपियाँ वो भगवान के सारे शरीर को चेक कर रही थी कहीं पर कुछ मतलब कोई मसल तो नहीं खिंच गया कुछ चोट तो नहीं आ गई। और जो भगवान के फ्रेंड्स हैं वो भगवान के जो शरीर है उसकी मालिश कर रहे थे कि थक गए होंगे भगवान, या हो सकता है अभी थकान का अनुभव नहीं कर रहे, कुछ देर के बाद थकान का अनुभव करेंगे। कई बार होता है ना एक्साइटमेंट होती है पता नहीं चलता, बाद में अनुभव होता है, तो वो सब भगवान का शरीर की मालिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मतलब हमारे आचार्य बता रहे हैं कि सब लोगों ने देखा कि कृष्ण ने मतलब गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया और सबकी रक्षा की, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं आया, है ना। उनके मन में ऐश्वर्य भाव नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। हमारे आचार्य बताते हैं कि जो ब्रजवासी हैं उनको पता था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो इस बात से प्रभावित नहीं होते थे, है ना, क्योंकि जो उनका भाव था, चाहे वात्सल्य भाव था, चाहे सख्य भाव था, चाहे माधुर्य भाव था, वो भाव ऐश्वर्य भाव को कभी प्रकट नहीं होने देता था। इसीलिए यशोदा माई जो है वो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया भी हुआ था तो वो बार बार भगवान के मुख में खाना डाल रही थी कि भूख लग रही होगी। और जीवा गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं ब्रजवासी उनकी बात तो छोड़ो, जो जो जितने भी गायें इत्यादि थे बछड़े थे वो भी 7 दिन तक उनको भी कुछ भूख प्यास का अनुभव नहीं हुआ, वो भी आराम से बैठे रहे और भगवान का मुख का दर्शन करते रहे। और जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि उन 7 दिनों में भगवान ने इतनी लीलाएं की कि अनंत शेष जो है वो ब्रह्मा के 7 कल्पों तक भी अगर 1000 मुखों से अगर वर्णन करते रहें तो भी पूरा नहीं कर सकते। तो मेरी क्या बिसात है कि मैं कुछ श्लोकों के अंदर इसका वर्णन कर पाऊँ। और बाद में उन्होंने बोला श्रीमती राधा रानी को लक्ष्य करके कि जो आपकी लीलाएं हुई इस गोवर्धन धरण के दौरान उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, तो जो आपका भाव है मैं उसको प्रणाम करके उसको समाप्त करता हूँ। तो उन्होंने ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर आप लोग प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को पढ़ लें तो आप कभी इस योग्य बनेंगे कि आप जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके ग्रंथों को पढ़ें, और उसमें आप देखेंगे कि गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी ने बहुत ही रसिक भाव से जो है गोवर्धन लीला का वर्णन किया है और बताया है कि अलग अलग जो ब्रजवासी थे वो गोवर्धन लीला के दौरान उनका क्या भाव प्रकट हो रहा था। जो गोवर्धन लीलाएं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ पाएं कि चाहे हम कितनी भी महत्वपूर्ण सेवा क्यों ना कर रहे हों, हमें कभी भी गर्व का अनुभव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे से कुछ सेवा कर पा रहे हैं तो वो सेवा करने के पीछे हमारा कुछ योगदान नहीं है। जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑपरेशन करने वाला ब्लेड कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अच्छा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर को जाता है। इसी प्रकार अगर हम कुछ अच्छे से सेवा कर पाएं तो उसका श्रेय हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा से ये जो है कार्य संपन्न हो पाया, हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, मैं तो वहां पर मौजूद था, है ना। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये सब मर चुके हैं, जितने भी ये सैनिक हैं यहाँ पर, निमित्त मात्र भव सभी साचिन, हे अर्जुन तुम तो एक निमित्त की तरह कार्य करो, सारा काम मैं कर चुका हूँ, बस तुम खड़े हो जाओ वहां पर आके, है ना। उसी प्रकार हम कितना ही भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से हम कितना ही महत्वपूर्ण कार्य क्यों ना कर लें, हमें कभी भी अपने में गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो भी कार्य संपन्न हुआ है वो उसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, मुझ में ऐसा कुछ योग्यता नहीं है कि मैं ऐसा कार्य कर पाऊँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि विपत्ति के समय कोई भी जो ब्रजवासी है वो भगवान कृष्ण से दूर नहीं गया, कितनी भी विपत्ति आई वो सब इकट्ठे ही रहे। तो उससे हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि इस्कॉन एक संस्था है और ये संस्था इस प्रकार से बनी है कि इसमें हर एक भक्त के शुद्धिकरण के लिए अनेक प्रकार की तथाकथित समस्याएं उपस्थित होती हैं, है ना। कुछ भी समस्या आपको इस संस्था में रहते हुए आए, वो समस्याएं हमारे शुद्धिकरण के लिए, ऐसा समझना चाहिए। और कैसी भी परिस्थिति हो इस्कॉन को छोड़ के जाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनको समस्या दिखती है, प्रॉब्लम आती है तो इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन मेरा शरीर है, है ना, कुछ भी हो जाए इस्कॉन को छोड़ के मत जाना। हाँ, और हम हमारे जो गुरु हैं हम उनके भी जीवन चरित्र से देखते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन वो कभी भी उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं इस्कॉन को छोड़ के चला जाऊं, और उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया। और आज हम देखते हैं कि सब लोग इस बात के लिए उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर भी वो इस्कॉन में सेवा करते रहे। तो हमें ये हमेशा हमारे मन में ये ध्यान रहना चाहिए कि चाहे कोई भी भक्त हमारी कितनी इंसल्ट क्यों ना कर दे, कितनी बेइज्जती क्यों ना कर दे, हमें कितनी मुश्किल में क्यों ना डाल दे, काम आपने किया श्रेय वो ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी परिस्थिति होगी, कैसा भी कुछ भी हो जाए, आप पे अगर कोई झूठा सच्चा इल्जाम भी अगर कोई लगा दे, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, इस कौन छोड़ के कभी जाने के बारे में मत सोचना, है ना। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता है, एकमात्र आशा की किरण है कि हम इसमें रहकर कभी प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाएंगे और प्रभुपाद को प्रसन्न करने के द्वारा हम कभी ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे कि प्रभुपाद हमें भगवान की सेवा में और अच्छे से लगाएंगे। अगर हमने कभी भी प्रभुपाद को छोड़ा, चाहे हम पूरे संसार को जीत लें, पूरे संसार को भक्त बना लें, लेकिन क्योंकि हमने प्रभुपाद के चरणों को छोड़ा है, सिर्फ इसी कारण से हमें कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहले इस्कॉन में थे और प्रभुपाद की शरण में थे, आज वो इस्कॉन छोड़ के अपना अलग से प्रचार कर रहे हैं और बहुत सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता किसी काम नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद के चरणों के प्रति अपराध किया है, प्रभुपाद के चरणों को छोड़ के गए हैं, चाहे वो पूरा संसार ही जो है पलट के रख दें भगवान की सेवा में, तो भी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम प्रभुपाद की सेवा दोषों सहित भी करेंगे, अगर अच्छे से नहीं भी कर पाए, लेकिन प्रभुपाद की सेवा के प्रति अगर हम बहुत ही श्रद्धावान बने रहेंगे तो हम भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा हमारे प्रयास से प्राप्त नहीं होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी हमें प्रभुपाद की और अपने गुरु की कृपा के माध्यम से, और अन्य कुछ रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो ये जो गोवर्धन का सारा ये लक्ष्य कैसे हुआ कि जैसे कल तो अमावस्या थी, सो आज गोवर्धन पूजा हुई सब ब्रजवासियों के कहने पर, आप सब ब्रजवासियों ने किया भगवान कृष्ण के कहने पर, और कल भैया दूज है, तो और भैया दूज भी भगवान ने भी भैया दूज मनाई, और गोपाल चंपू में इसका वर्णन है कि जो भगवान के चाचा थे उपनंद, उनकी जो बेटियां थी उन्होंने भगवान के लिए बहुत भोजन बनाए, और सौ तृष्णों और कृष्ण और बलराम जो है बहुत ही उत्कंठा के साथ में जो है उनके घर गए और उनके हाथों से भोजन किया। यमराज जी ने भी, यमुना देवी जो है यमराज जी की बहन है, सूर्य पुत्री है, यमुना देवी जो है वो यमराज जी के लिए भोजन बनाती हैं और यमराज जी उसको ग्रहण करते हैं। तो जो भैया दूज का त्यौहार है वो ऐसा भौतिक नहीं है, और हमें जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने बहनों के हाथ से प्रसाद ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, तो हमें उस लीला का स्मरण करते हुए भैया दूज का भी हमें मनाना चाहिए। और भैया दूज के अगले दिन, तीसरे दिन, अमावस्या से तीसरे दिन जो है इंद्र कुपित हो गया था और इंद्र ने सारा जो इतना घमासान मचाया उन्होंने, और जब सब लोग अपने अपने घर गए, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत नीचे रख दिया, सब लोग अपने अपने घर गए, तो एक तिनका भी नहीं हिला था। ऐसा नहीं था कि गोवर्धन पर्वत के नीचे सब ठीक था, बाकी सारी जगह जो है पूरा ब्रज तबाह हो गया था, सब लोग अपने घर गए, हर चीज यथास्थान, तिनका भी नहीं हिला था अपनी जगह से। तीसरे दिन जो है भैया दूज के अगले दिन इंद्र ने वो ब्रजपात और संवर्तक बादल भेजे, सो तीन से नौ दिन जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, सो और नवे दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, तो तीन से नौ मतलब सात दिन हो गए, है ना। और जो दसवें दिन, दशमी को इंद्र को हर जगह से दुत्कार मिली, बृहस्पति ने दुत्कारा और ब्रह्मा जी ने दुत्कारा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हारे लिए कुछ आशा की किरण है तो एक सुरभि गाय आशा की किरण है, तुम जाओ और सुरभि गाय की शरण लो और सुरभि गाय को सामने रख के भगवान के पास जाओ, तो शायद भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो इंद्र गए सुरभि लोग और वहाँ से सुरभि गाय को लेकर आए, और सुरभि गाय के साथ में दशमी के अगले दिन एकादशी को तो एकादशी के दिन इंद्र गए भगवान कृष्ण के पास और उनकी उपासना की, और सुरभि गाय ने बोला भगवान कृष्ण को कि आप प्लीज इनको माफ कर दो। और एकादशी के दिन जो है इंद्र और ऐरावत जो है वो अपने सूंडों में पानी भर के ला रहा था कलशों में स्वर्ग लोक की गंगा से, और उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। सो जो भगवान का अभिषेक करने का और गवेंद्र अर्थात गायों के इंद्र की उपाधि से भगवान को उपाधि प्रदान की गई, और सुरभि गाय ने कहा कि हमें प्रसन्न करने के लिए अगर आप गायों के इंद्र गायों के स्वामी की उपाधि ग्रहण करेंगे तो इससे हमारा यश बढ़ेगा, हमें संतोष मिलेगा, तो आप प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। तो वो भी एक बहुत ही अद्भुत लीला है, एकादशी के दिन हुई थी जब इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था और भगवान को गवेंद्र की उपाधि प्रदान की थी, और सभी ग्वाल बाल दूर खड़े होकर देख रहे थे कि किस प्रकार अभिषेक हो रहा है, और सभी देवी देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि सभी आए और उन्होंने भगवान को अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए। इसका विशद विवरण विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। सो आगे के आने वाले कई दिन जो हैं उनमें हम वैसे तो रोज ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन जो आगे एकादशी तक विशेष हम भगवान की, जो भगवान ने बहुत ही अद्भुत लीलाएं की हैं, तो हमें रोज उसका स्मरण करना चाहिए और अच्छे से भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और जप के द्वारा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान आप प्लीज हमें भी अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा। सो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, अगर किसी की कुछ टिप्पणी है कुछ प्रश्न है तो आप कह सकते हो। गोपाल चंपू में शीला जीवा गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं कि रोहिणी और यशोदा माई दोनों भगवान के अगल बगल खड़ी हो गई थी और बार बार उनका मुंह पहुँच रही थी और उनका जो है बार बार उनको खिला रही थी ताकि भगवान जो है वो भूख ना लगे उनको। तो ये भी हो सकता है जो आप कह, जो सीनियर भक्त हैं हो सकता है वो भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गोवर्धन लीला एक बार नहीं हुई है, अनेक बार हुई है गोवर्धन लीला, है ना। सो हो सकता है किसी और कल्प में ऐसा भी हुआ हो, अलग तरह से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से वर्णन होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये बात सही है तो वो बात गलत होगी, वो भी सही हो सकती है ये भी सही हो सकती है, ठीक है। ऑफेंस के कारण जाएंगे नरक में, ऑफेंस के कारण, क्योंकि हमने गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुरु त्याग करने का सिर्फ एक ही कारण है, हम एक सिर्फ एक कंडीशन में गुरु का त्याग कर सकते हैं जब वो कृष्ण विमुख हो जाए। अगर गुरु भगवान कृष्ण से विमुखता प्राप्त करते हैं और अपने गुरु का जो शरण है उसको त्यागते हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में गुरु का त्याग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और बिना गुरु की परमिशन के किसी अन्य संप्रदाय में, अन्य संप्रदाय में जाना तो मतलब जब तक गुरु की परमिशन नहीं हो नहीं जा सकते, है ना। और अगर किसी और गुरु का भी संग करना है तो भी अपने गुरु की परमिशन से ही करना चाहिए, है ना। जैसे हृदयानंद गोस्वामी ने श्यामानंद पंडित को बोला था कि आप जीवा गोस्वामी से शिक्षा लो, तो उन्होंने सामने से बोल के उनको भेजा था तो उन्होंने शिक्षा लिया, है ना। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नहीं, अगर गुरु या वरिष्ठ भक्त जो हैं उनसे परमिशन लेके हम किसी अन्य गुरु का भी संग कर सकते हैं। हाँ, किसी से भी सी यहाँ पे एक फर्क ये है, जो कंफ्यूजन आपको आ रहा है वो फर्क ये है कि सुनना हरेक से चाहिए। सारे इस कौन में सब लोग प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु हैं, तो सुनना हरेक से चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इससे सुनूंगा उससे नहीं सुनूंगा, हरेक से सुनना चाहिए। लेकिन क्लोज एसोसिएशन है, जो मार्गदर्शन है, वो हरेक से नहीं ले सकते। जो मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन लेने के लिए या तो गुरु से मार्गदर्शन लो, गुरु के जो ऑथराइज्ड प्रतिनिधि हैं उनसे मार्गदर्शन लो, या उनकी परमिशन लेकर किसी और से मार्गदर्शन ले। हाँ, दीक्षा गुरु एक होता है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। ठीक है, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। हाँ, इस्कॉन छोड़ना श्रील प्रभुपाद के चरणों को त्यागने के समान है। दोनों एक ही बात है। आपने क्यों पूछा? कैसे? कैसे? लेकिन इस्कॉन छोड़ना क्यों है? तो वो गलत कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं प्रभुपाद के चरणों में। कुछ भी हो जाए इस्कॉन को नहीं छोड़ सकते। कोई बड़ी से बड़ी परेशानी हो इस्कॉन के अंदर ही रहना है, ये पॉइंट है बस। ठीक है। हाँ, क्यों नहीं है? बहुत सारे डिवोटी पढ़ते हैं, मैंने पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, नहीं तो अतिक्रमण हो जाएगा ना। हमने प्रभुपाद की शिक्षाएं तो पूरी तरह से पढ़ी नहीं और उनको कूद के हम चले जाएं कि चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पढ़ते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाएं पढ़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पहले प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर आप दूसरी जो ग्रंथ हैं वो पढ़ सकते हो। पहले प्रभुपाद के प्रति अपने ऋण को उतारो, उनकी पुस्तकें पूरी पढ़ के उसके बाद फिर दूसरी जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकते हो, है ना। अगर टाइम है तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद की पुस्तकों में सब दिया हुआ है, जो भी जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांता सरस्वती हैं, उन सब की शिक्षाओं को प्रभुपाद ने, बलदेव विद्याभूषण है, उन सब की शिक्षाओं को बहुत ही सार रूप में और बहुत ही सरल भाषा में प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दिया। आप अगर अच्छे से पढ़ें और उसकी एनालाइज करें आप, तो हम ये देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों की सारी शिक्षाएं प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दी हैं, हमें अभी तक वो दिखाई नहीं दे रही। एक ऐसा भक्त चाहिए जो कि हमें दिखा सके, देखो ये यहाँ पर ये लिखा है, इसका ये मतलब है, और देखो ये वही बात वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कह रहे। हर चीज प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ में दे रखी है। क्यों पुनरावर्ती हो रही है, एक बात को बार बार क्यों बोला जा रहा है, प्रभुपाद क्यों एक बात को बार बार बोल रहे हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, क्योंकि अभी तक हम समझ नहीं पाए हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर हम समझ जाते प्रभुपाद नहीं कहते। प्रभुपाद ने प्रभुपाद से पूछा था किसी ने कि आप बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो, शरीर नहीं आत्मा। प्रभुपाद ने बोला समझ गए तुम, अगर समझे हो तो उस स्तर पे कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। तो बार बार रिपीट करने के पीछे दो कारण होते हैं, अगर हम न्याय के अनुसार चलें तो दो कारणों से किसी बात को बार बार रिपीट किया जाता है। पहले कारण ये होता है कि वो बात वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए, नहीं तो बात को रिपीट करना दोष माना जाता है। लेकिन दो कारणों से बात को रिपीट किया जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको रिपीट करना आवश्यक हो जाता है, रिपीट करने से उसकी शोभा बढ़ती है। और दूसरा कारण किसी बात को बार बार रिपीट करना इसलिए भी तर्कसंगत होता है कि दो चार बार बोलने से हमें समझ नहीं आ रही, बार बार बोलेंगे तो शायद समझ में आ जाए। बार 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 बोलेंगे तो हो सकता है हमें कभी ये बात क्लिक कर जाए, कभी ये बात हम समझ पाए कि हाँ यार बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा करना चाहिए, है ना। हाँ तो एक ही बंदे की प्रेयर कर रहे हैं ना, एक ही बंदे, तो उससे क्या हो गया। क्यों इंटरेस्ट बढ़ जाता है भगवान, हम आप प्रेयर्स को छोड़ो, हम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं थकते। हरे कृष्ण जो शब्द है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हम उसको करोड़ों बार क्यों ना बोले, हम कभी नहीं थकेंगे। तो अलग अलग प्रेयर्स की तो बात ही क्या है, जो भी प्रेयर्स भगवान के लिए की जा रही हैं, क्योंकि भगवान से संबंधित हैं और भगवान से स्पर्श कर रही हैं, इसलिए उसमें एक गुण आ जाता है कि हमेशा नवीन रहती हैं। हम कितनी भी बार उसको सुनेंगे, जैसे हमने अभी गोवर्धन लीला की, ऐसा थोड़ा ना गोवर्धन लीला आपने कभी सुनी नहीं है, लेकिन जितनी बार भी सुनेंगे एक नए रस का आस्वादन करने को मिलेगा। अभी आप दोपहर को दोबारा गोवर्धन लीला सुनेंगे, उसमें दोबारा आपको वही बात सुनने से भी एक नए रस का आस्वादन कर पाएंगे, कभी भी बोर नहीं होंगे। अभी हम बोर इसलिए हो रहे हैं, हमें अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मिश्री के समान मीठी है, लेकिन हमें जॉन्डिस है, हमें पीलिया रोग है, हम जो है उसका आस्वादन करने में असमर्थ है। तो प्रॉब्लम प्रेयर्स में नहीं है, प्रॉब्लम हरे कृष्ण मंत्र में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है, हमारे में तकलीफ है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भगवत विमुख है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग पा रहा है ना। तो उसको, उस अपूर्णता को हटाने का उपाय क्या है, उसको बार बार सुनते रहो, बार बार बोलते रहो, अपने आप हट जाएंगे, है ना। सो अगर प्रेयर्स बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर हम बार बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो उसमें अगर रुचि नहीं आ रही तो हमारे में प्रॉब्लम है, मंत्र में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं है, बहुत धन्यवाद। हाँ हम बोल सकते हैं, और हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि मैं अपने आचार्यों की प्रेयर दोहरा रहा हूँ, है ना। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हेरिबो, हाँ क्या बोल रहे हैं, जो तुलसी आरती कर रहे हैं, हाँ हेरी वो सदा जुगल रूप राशि। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम जुगल रूप राशि देखना चाहते हैं। हमें ये प्रेयर करनी चाहिए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जुगल रूप राशि देखना चाहते हैं, है ना। हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम ये प्रेयर बोलते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ स्वामी हमें दर्शन दो। हम इस लायक नहीं है बोलने के लिए कि हमें दर्शन दो, है ना। लेकिन हम जब ये हम ये प्रेयर्स बोल सकते हैं भगवान को, ये अपने मन में ये भाव रख के कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, है ना, ये उनका भाव है और मैं इसको दोहरा रहा हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता कि हेरिबो जुगल रूप राशि, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं जुगल रूप राशि को देख सकूं, है ना। मैं इस योग्य नहीं हूं कि वृंदावन में वास कर सकूं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना। ये उनका भाव है और क्योंकि उनके मन में ये भाव है, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देखना चाहते हैं, हम देखने के योग्य नहीं है, हम ये प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है हमें। हमें कुछ भी बोलने से पहले अधिकार चाहिए ना हमें, हमारे पास अभी ये अधिकार नहीं है कि हम भगवान को बोल सके कि आप हमें दर्शन दो, नयन पथगामी भव तुम्हें, हमारे नयनों के रास्ते में आओ, नयनों के रास्ते में आओ मतलब दर्शन दो। अभी हम इस योग्य नहीं है कि ये कह सके, लेकिन हम जब भी ये बोलें तो क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन ये सोच के बोलना चाहिए कि ये उस आचार्य की प्रार्थना है, हमारी नहीं है प्रार्थना, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न, बहुत से लोग अपने अपनी समझ के ये प्रार्थना करने शुरू कर देते हैं, है ना। अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति र भावे, भक्तिनो ठाकुर कह रहे हैं जब तक अधिकार नहीं है तब तक उस स्तर पे काम नहीं करना चाहिए, है ना। अधिकार होगा फिर सोचेंगे, अभी अधिकार नहीं है तो उस स्तर पे कार्य मत करो। लेकिन क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसी प्रार्थनाएं कर रखी है तो उनका स्मरण करते हुए कि उन्होंने ऐसी प्रार्थना बोली है, और भगवान को उन आचार्यों का स्मरण कराने हेतु उन प्रार्थनाओं को हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको अपना समझ के नहीं बोलना चाहिए कि मेरी ये प्रार्थना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, गुरु से चेक होगा अधिकार, गुरु और वरिष्ठ वैष्णव बताएंगे कि आपके पास अधिकार है कि नहीं।